प्रस्तुति। एक कदम रोशनी की ओर। कैंसर योद्धाओं से बातचीत की श्रृंखला।
एक कदम रोशनी की ओर। इस क्रम में हम आप लोगों को सुनवा रहे हैं कैंसर सर्वाइवर से बातचीत। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं अनिता दुआ। एक बार कैंसर नहीं, चार बार कैंसर इनको अटैक कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये जिंदा दिली के साथ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है अनिता जी आपका अर्पा रेडियो में।
थैंक यू मैम।
अनिता जी, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं हमको हम आपके पास से। कहते हैं कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ नाम से ही दहशत पैदा कर देती है। जिस किसी को भी कैंसर होता है उसको ऐसा लगता है कि मौत उसके सामने है, और आप चार बार की कैंसर योद्धा विजेता रही हैं। तो कैसा लगता है अब आपको, और पहले और अभी में आपकी सोच में क्या परिवर्तन आया है?
जब पहली बार मुझे कैंसर हुआ था तो मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे, तब जीने की एक लालसा थी कि मुझको बच्चों के लिए जीना है। इसके बाद मुझसे मैंने उसको दूर कर लिया कैंसर को अपने से। 25 सालों के बाद मुझको फिर रिपीट हुआ।
अच्छा, पहली बार कब हुआ था आपको?
92 में।
अच्छा,
उसके बाद मैं भूल भी चुकी थी कि मुझको कभी कैंसर हुआ है। फिर 2017 में
अच्छा
अचानक ब्रेस्ट कैंसर फिर डायग्नोज हुआ मुझको।
पहली बार भी आपको ब्रेस्ट कैंसर ही था?
यूट्रस कैंसर था पहली बार।
अच्छा,
यूट्रस आउट हो गया, कैंसर चला गया मेरे शरीर से, कोई पता नहीं चला, फिर भूल भी गई थी। फिर रिपीट हुआ, ब्रेस्ट आउट कराया, तब मेरी एज हो चुकी थी करीबन 57 ईयर।
ओके।
बच्चे अपने अपने में लग चुके थे, पति की डेथ हो चुकी थी मेरे। फिर एक नए सिरे से उस जंग को लग कि अब अपने लिए जीना है। फिर धीरे धीरे मेरे को ये लगने लगा कि नहीं, कैंसर से घबराने की मुझको जरूरत नहीं है। उसको पॉजिटिव लिया मैंने कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे बाकी बीमारियां होती ये भी एक बीमारी है। तो इसको हवा नहीं बनाया मैंने, इसको मैंने जिंदा दिली से फेस किया। पार हो गई, 1.5 साल के बाद फिर रिपीट।
अच्छा।
उसके बाद ये मेरे को डॉक्टरों को एक आश्चर्य हुआ कि सेटर्नम बोन पे बहुत रेयर होता है, मतलब लाखों में एक दो हो, तो ये गले के पास होती सेटर्नम बोन।
अच्छा,
उस पे हुआ मुझको।
अच्छा,
बॉम्बे जाके ऑपरेशन कराया, फिर वही नई जिंदगी फिर से शुरू की। अब जहाँ पर मैंने ऑपरेट कराया था उसके बाजू से एक और गिल्टी है, प्लस जहाँ ऑपरेट कराया था वहां पर भी एक छोटी सी गिल्टी है। तो डॉक्टरों ने कहा ऑपरेट दो जगह आपका नहीं करेंगे, अब आपको इसी के साथ जीना है और मरना है।
अच्छा,
तो इसको मैंने आत्मसात कर लिया कि अपना विल पावर मेरे को नहीं खोना है, और जितनी मेरी जिंदगी है अब उसको मैंने कैंसर के लिए समर्पित कर दी है। इस स्पंदन संस्था से जुड़ी हूँ, और बाकी जगह से भी मुझको वीडियो कॉल्स आते हैं, लोगों को मेरे से जो क्वेश्चंस करने होते हैं उनको सलाह देती हूँ, जो मैंने फेस किया है वो बताती हूँ उनको।
हमको तो ऐसा लग रहा है आपकी कहानी सुन करके कि लोग कैंसर से डरते हैं, कैंसर अब आपसे डरने लग गया है।
सही बात है।
आपकी बातें सुन करके हमारी भी आंखें भर आई हैं, और हमारे पास पास इस समय जितने लोग बैठे हुए हैं या जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे उनकी भी आंखें जरूर डबडबा रही होंगी। अनिता जी, जैसा आपने कहा कि अभी आपके दो गिल्टियां और हैं
जी,
तो क्या ये कैंसर डायग्नोस हो चुकी हैं अभी?
जी हाँ।
मतलब इस वक्त आप कैंसर सेल्स के साथ जी रही हैं?
जी रही हूँ, और ये डॉक्टर ने कहा है कि ये आपके साथ ही अभी रहेंगे, उसको बढ़ने मत दीजिए, विल पावर रखिए अपना, दवाइयाँ खाइए टाइम पे, ठीक है? मैं बहुत सेफ हूँ, अपने आप को महसूस करती हूँ।
अच्छा,
डॉक्टरों ने मुझको जवाब दिया हुआ है।
तो बढ़ने मत दीजिए, ये लाइन डॉक्टर्स ने कही है, जबकि इन सेल्स के ऊपर एक इंसान का कंट्रोल नहीं रहता है, तो ऐसा कैसे संभव है?
विल पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखना है।
ओके।
विल पावर आपने छोड़ दिया तो आपकी दवाइयां भी कोई असर आपके ऊपर नहीं करेंगी, अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखिए आप।
जैसा आप कह रही है ना, विल पावर, मतलब कैंसर योद्धा बनने के लिए विल पावर होना बहुत जरूरी है। ऐसे एक बार हमने एक डॉक्टर से पूछा था कैंसर किसको होता है, तो उन्होंने कहा था किसी को भी हो सकता है, कैंसर जो है एक ढीठ बच्चा है जो शरीर में किसी भी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, कैंसरस हो जाते हैं। आपकी बात सुन करके मुझे याद आया कि उन डॉक्टर ने भी ऐसे ही बहुत सामान्य ढंग से कहा था, जबकि आप तो इतनी बड़ी जंग लड़ चुकी हैं, उसके बाद आप कैंसर को अपने साथ लेकर चल रही हैं और इतने जिंदा दिली के साथ हम लोगों के बीच बैठ के अपनी कहानी सुना रही हैं। जैसा आपने कहा, आपने कैंसर को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो एक तरह से आप काउंसलर का काम कर रही हैं, तो कितने कैंसर पेशेंट्स को अब तक आप काउंसलिंग दे चुकी होंगी?
करीबन 100 को तो दे ही चुकी हूँ।
अच्छा, फोन पे भी, मतलब पूरे देश में
वीडियो कॉल पे मेरे को बोलते हैं डॉक्टर्स, और यहाँ पे हैं डॉक्टर जो रालकर सर, मैं समझा लेती थी।
अच्छा,
जो मैंने फेस किया है, मैं चाहती थी दूसरे उस चीज से डरे मत, डर के तो हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। एक मेरे को बहुत अच्छी पंक्ति याद आती है कि जिंदगी को समझ लो तो खुशियों का, नहीं तो गम का दरिया है। सुख और दुख क्या है, बस हमारे देखने का नजरिया है। तो इसको आप अच्छे नजरिए से देखिए, हर सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छाई को देखिए ना आप।
बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो अनिता जी, आप हमारे रेडियो के माध्यम से उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो बिल्कुल नए नए कैंसर जिनको डायग्नोस हुआ है, जैसे लोगों को आप काउंसलिंग देती हैं
जी,
तो हमारे रेडियो के माध्यम से उन लोगों को काउंसलिंग किस तरह से देंगी?
कि डॉक्टर ने आपको जो दवाइयाँ प्रोवाइड की हैं उसको बिल्कुल बिना नागा खाइए, फॉलो अप डॉक्टर बताते हैं। जैसे कई लोग क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी हमारी हो गई, हमारा कैंसर ठीक हो गया, लेकिन वो सुप्त सेल कब आपकी जाग जाएगी ये आपको भी नहीं पता है, डॉक्टर को भी नहीं पता है। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है। तो वो डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि हमको 6 महीने में करना है, साल भर में करना है, जब जब डायग्नोस बोलेंगे डॉक्टर, तो आप फॉलो अप बिल्कुल करिए उसको।
अच्छा,
फॉलो अप बहुत जरूरी है
जी हाँ। लेकिन जैसे एक बार कहते हैं कि पूरी तरह से निकल गया कैंसर शरीर से, उसके बाद आपने भी जैसे कहा कि 92 में जब आपको कैंसर हुआ था उसके बाद आप भूल चुकी थी, आपने फॉलो अप करना भी छोड़ चुकी थी आप, और उसके बाद फिर अचानक आपके शरीर में जो है वो कुछ सेल्स ढीठ हो गए, तो ऐसी स्थितियों में क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे श्रोताओं को?
कि कैंसर से हमको डरना बिल्कुल नहीं है, कैंसर को डराना है।
बहुत अच्छी बात,
ये मेरा लोगो है।
अच्छा,
कि बिल्कुल डरना उसे है ही नहीं है। अब तो मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे सर्दी खांसी बुखार है।
अच्छा,
ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। और बताना चाहती हूँ मैं कि मैं 57 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला हूँ जिसने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है। मेरे संघर्ष को देखते हुए मुझको छत्तीसगढ़ की आयरन लेडी का टाइटल दिया गया है।
तो आयरन लेडी हैं आप, और किसी को बीपी भी होता है, डायबिटीज होती है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं किया जाए, उनका ब्लड नहीं लेते हैं, लेकिन आप एक कैंसर सर्वाइवर होकर के लोगों को ब्लड डोनेट कर रही हैं?
नहीं, मैंने ब्लड डोनेट बंद किया 15 में, ये तो बाद में फिर डायग्नोज हुआ ना।
अच्छा,
उस समय तक मेरा ठीक हो चुका था। तो उसकी भी प्रेरणा मुझको मिली जब मेरा उस समय ब्लड की बहुत जरूरत थी, तब ब्लड मेरे को मिल नहीं रहा था मेरे ग्रुप का।
अच्छा,
तब उस समय मैंने मन में ठान लिया था कि मेरा जीवन जब तक रहेगा, मैं जब तक देने लायक रहूंगी ब्लड, डोनेट करूंगी बिल्कुल। तो हर 6 महीने में डोनेट करती थी मैं।
अच्छा,
रिकॉर्ड्स है पूरे उसके मेरे पास में, और राज्यपाल से सम्मानित उसके लिए मैं, प्लस निःशुल्क योग लेती हूँ मैं, 30 साल हो गया।
अच्छा,
उसके लिए भी बहुत सारी संस्थाओं से सम्मानित हूँ मैं कि निःशुल्क योग लेती हूँ करके।
तो आप जहाँ निःशुल्क योग लेती हैं उसका एड्रेस और आपका फोन नंबर भी आप हमको दें, जिससे श्रोता साथी अगर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं।
पहले मैं गार्डन में लेती थी, लेकिन जब से कोरोना हुआ तब से सेफली मैंने अपने घर में लेना शुरू किया। मुक्तिधाम चौक सकंडा चौक में पहुंच के किसी से पूछे, अनिता दुआ मैम का घर, योग वाली मैडम का घर आपको बता देंगे।
अच्छा,
और मेरा फोन नंबर है 9755112010।
और अब तो योग वाली मैडम की जगह आप आयरन लेडी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी होंगी, तो आयरन ये भी लोग श्रोता साथी बोल सकते हैं, आयरन लेडी का घर कहाँ पे है जो योग सिखाती है।
जी,
तो अनिता जी, आप इतने जगह से सम्मानित हो चुकी हैं, इतनी शानदार जिंदगी जी रही हैं आप, जिसकी लोग जो है बहुत स्वस्थ रहने के बाद भी वैसा जीना लोगों का जो है संभव नहीं हो पाता है, लोग छोटी छोटी सी चीजों में अपनी विल पावर खो देते हैं। लगातार सर्दी जुकाम होती है तो बोलते हैं पता नहीं हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है और हमको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, उसमें तक लोग विल पावर नहीं लगा पाते हैं। लेकिन आपने इतने बड़े संघर्ष को झेलने के बाद भी अपनी विल पावर नहीं छोड़ी है, इसके लिए आप अपनी इम्यूनिटी और कैसे डेवलप करती हैं, कैसे बढ़ाती हैं योगा के अलावा? और
क्योंकि योग है ही, साथ ही प्रिजर्वेटिव चीजें आप कम खाइए। ताजे फल हमारे छत्तीसगढ़ तो पूरे हमारी इतनी अच्छी धान का कटोरा है, अब तो हर प्रकार की फसलें होती हैं, इतनी भाजियां जो होती हैं हमारी, मेरे ख्याल से और कहीं पे इतनी भाजियां नहीं होती जितनी छत्तीसगढ़ में हमारी भाजियां मिलती हैं। ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो जितनी ताजी चीजें मिलती हैं आप उसको बिल्कुल खाइए। बच्चों को भी शुरू से आदत डालिए कि ताजे फ्रूट्स ताजी सब्जियां, महंगा फल बहुत जरूरी नहीं है, उतना ही प्रोटीन विटामिन कुछ सस्ती चीजों में भी मिल जाता है। तो आप हेल्दी डाइट लीजिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी, और 7 से 8 घंटे की नींद डॉक्टर बोलते हैं कंप्लीट करिए अपनी, उसको जरूर करिए। और जिंदगी आपको एक बार मिली है, उसके किरदार को ऐसा जिए कि जब आपका पर्दा गिरे रंगमंच का तो लोगों की तालियां देर तक बजती रहें।
इतनी खूबसूरत बात आपने कही है कि वाकई जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसके किरदार को हमें अच्छे से अच्छे रूप में जीना चाहिए, चाहे कोई भी तकलीफ आए, कोई भी परेशानी हो, उन सब चीज़ों का सकारात्मक रूप देखते रहें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जीते रहें। इनके इस संदेश के साथ हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अर्पा रेडियो में आज आकर इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी बहाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप बता दो। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी श्रोताओं से कि अपने अंदर हमेशा एक शौक जिंदा रखिए। वो शौक आपका पढ़ाई का हो सकता है, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ नहीं है तो मेरे को योग है, डांस मेरी जिंदगी है, तो वो शौक आपको अपनी बीमारी से भी आपको बाहर ले जाता है, नहीं तो 24 घंटे आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन अगर आपका शौक है तो उतनी देर आप उस बीमारी को भूल जाते हैं। पेंटिंग करते हैं आपका ध्यान पूरा पेंटिंग पे है, डांस कर रहे हैं आपका डांस में ध्यान है, तो उस समय बीमारी को आप भूल जाते हैं। तो कोशिश ऐसा करिए कि अपने शौक को जिंदा रखिए, तो आप कभी बूढ़े भी नहीं होंगे और साथ ही साथ आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता रहेगा।
चलते चलते अनिता जी, आपने बताया 57 साल की उम्र में आपको दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, क्या हम जान सकते हैं अभी आपकी उम्र कितनी है?
गेस करिए। 63।
क्योंकि हमारे श्रोता साथी आवाज से तो नहीं पहचान पाए होंगे, लेकिन इस उम्र में आप जिस जिंदा दिली के साथ हम लोगों से मिल रही हैं, जिस तरह से आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर और अपने थ्रू दूसरों के अंदर बहा रही हैं, वो वाकई में नमन करने योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद
आपका भी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
बिलासपुर में कैंसर सर्वाइवर्स की संस्था स्पंदन इन दिनों बहुत अच्छे काम कर रही है, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने का काम कर रही है। आप उससे कब से जुड़ी हैं और वहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं जिनमें आप इन्वॉल्व हो रही हैं?
वहाँ पर मुझको जुड़े हुए करीबन 2.5 साल हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं। अपनी जो बीमारी है उसको तो हम झेल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोग जो बीमार हैं अगर उनको हमारी एडवाइस की ज़रूरत है हम वो भी देते हैं। साथ ही साथ उनको अगर वो इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो हमारी संस्था डोनेशन भी एकत्र करती है, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि उनका इलाज सकारात्मक रूप से हो सके।
अनिता जी, आपका जो ये संघर्ष का समय रहा, उस दौरान आपके परिवार वालों का कैसा सहयोग रहा? उनकी भी क्या आपकी तरह विल पावर थी उनके पास, और क्या सोचते हैं उसके बारे में बताइए।
पहली बार जब डायग्नोज हुआ था तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन जब 17 में डायग्नोज हुआ तो शायद ईश्वर ने उसको दुख के लिए ही चुना था। मेरे मिस्टर भी नहीं थे, मेरे बच्चा जो लड़का था वो भी रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो चुका था। सिर्फ एक बेटी थी जो रायगढ़ में जॉब करती थी। जब मुझे छूने से लगा कि अचानक बहुत तेज दर्द हो रही गिल्टी में, तो ढालकर को मैंने बताया मेरी फ्रेंड है, तो उसने कहा कि ठीक है तो एक बार मेरे क्लिनिक आ। जब डायग्नोज हो गया तो उसने ही मेरी बेटी को फोन करके बोला लसपुरा मम्मी के पास, तब तक उसने मुझको नहीं बताया था कि कैंसर है। फिर तेरे पीट हुआ, बच्ची बिना घबराए, मम्मी कोई बात नहीं, जो ट्रीटमेंट है हम सब कराएंगे आपका। फिर डॉक्टर ने बोला कि मम्मी के फिर बाल चले जाएंगे। बोलती कोई बात नहीं, हम लोग मम्मी के सब बाल स्टाइल वाले कटवा लेंगे ना, छोटे छोटे बाल। मतलब हर समय वो जैसे अपन बच्चों को बहलाते हैं ना, वो हर समय मेरे साथ लगी रहती थी। और जब मेरे को कॉलर बोन वाला जो हुआ सेटलमेंट बोन पे, तो स्थिति ये थी कि मैं जब 6 दिन ऑपरेट के बाद जब बिस्तर से उठी तो उठ नहीं पाती थी। तो जिस तरह छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं, कमर में हाथ लेके चलाते हैं, तो मेरी बेटी ने डॉक्टर से और जो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट थी उससे सीख के धीरे धीरे मेरे को वो चलाती थी। 20 दिन के बाद मैं बिलासपुर लौटी, तो कहीं ना कहीं अभी तक मुझको महसूस होता है कि फॉलो अप में बॉम्बे जाती हूँ, मेरी बेटी बिल्कुल प्लेन की टिकट कराना है, कब हमको वापस आना है। दिन में 4 बार पूछती है फ़ोन करके अपने जॉब से कि मम्मी आपकी तबीयत ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं आऊँ। तो मुझको ये लगता है कि वो मेरी माँ बन गई है।
अच्छा।
बचपन में मैंने उसको प्रोटेक्ट किया, अब वो बीमारियों से और हर तरह से मुझको प्रोटेक्ट करती है। तो परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे ठीक होने में।
बिल्कुल,
क्योंकि परिवार का अगर संबल नहीं होगा तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और अकेलापन इंसान को खा जाता है।
जी बिल्कुल।
तो आप अपने दोस्तों को बनाइए, दोस्त भी बहुत रखिए, शाम को घूमिए, इंजॉय करिए, अपनी लाइफ बिल्कुल बिंदास दीजिए। थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कदम रोशनी की ओर।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।